Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhilanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srishti ke kan kan mein anusyut nirakar parmatma aur usi nirakar parmatma ke sakar roop mein upasthit प्यारे श्रोता भाइयों और बहनों, कल हमने देखा कि जो मंद अधिकारी है और मध्यम अधिकारी है परमार्थ पथ के, उसके लिए कृपा करके यमराज ने ओमकार का उपदेश दिया और चारों वेद ओमकार का ही प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ओमकार भी एक महावाक्य ही है और महावाक्य में भाग त्याग लक्षणा के द्वारा तत्पद और त्वमपद उसका विचार करके भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जो महावाक्यों में एकता बताई है वैसी ही एकता यहां ओमकार में भी दृष्टिगोचर होती है। तो कल हमने जीवात्मा की तीनों अवस्था, ईश्वर की तीनों अवस्था, उन तीनों अवस्था में भाग त्याग का लक्षण दिखाकर किस तरह से ओमकार आत्मतत्व का प्रतिपादन करता है, एकत्व प्रतिपादन करता है, वह हमने कल देखा। उतना ही नहीं, कल हमने ये भी देखा कि जितने भी तप शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं वह सब तप वह परमात्मा के लिए ही वास्तव में है, और जो मुमुक्षुजन गुरुकुल में वास करके परमात्मा को पाना चाहता है वह ही है ओमकार, वह मैं हे नचिकेता आपको अवश्य कहूंगा। ऐसा यमराज ने कहकर दो मंत्रों के द्वारा यमराज ने कहा कि यह मंत्र, यह ओमकार जो है वह परब्रह्म का भी वाचक है और अपर ब्रह्म का भी वाचक है। जो कोई भी उपासक जिस दृष्टिकोण से उपासना करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। अगर वह अपर ब्रह्म का उपासक है, कार्य जगत का उपासक है, तो उसे वह चीज प्राप्त हो जाती है, और अगर वह परब्रह्म का उपासक है तो वह वो जान लेता है, वहां प्राप्त करता है फल जो भी प्राप्त होता है, और यहां परब्रह्म का उपासक होने की वजह से उसे वह जान लेता है। फिर 17वें मंत्र में हमने देखा कि यह ओमकार है, सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, क्योंकि प्रणव सर्ववेदेशु, सभी वेद वह प्रणव का ही विधान करता है और प्रणव से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वह कल हमने विशदपूर्ण देखा। और जो व्यक्ति इस परब्रह्म का आलंबन लेकर उपासना करता है, किसी कारणवश यहां चित्त शुद्धि न होने की वजह से या तो प्रतिबंध होने की वजह से यहां ज्ञान नहीं हुआ गुरु के उपदेश के बाद भी, तो वह ओमकार का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां वह मुक्त हो जाएगा। यह तीन मंत्र कल हमने देखे। अब यमराज आत्मतत्व का निरूपण करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम यमराज त्वमपद का शोधन करने वाले हैं। त्वमपद माने जीवात्मा। जो जीवात्मा इस शरीर के साथ तादात्म्य करके यह शरीर ही मैं हूं और मैं यह शरीर ही हूं ऐसा जो मानता है, उसमें शोधन करने, शुद्धिकरण के लिए दो मंत्र अब आएंगे। सबसे पहले मंत्र आएगा श्लोक मंत्र नंबर 18 वा। न जायते म्रियते वा विपच्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह विपश्चित माने यह आत्मा उत्पन्न हुआ नहीं है, तो स्वाभाविक है मरने वाला भी नहीं है। वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, और उससे भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी यह आत्मा किसी का कार्य भी नहीं और वह किसी का कारण भी नहीं। वह कैसा है? अजह, नित्य, शाश्वत, पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होने के बाद भी उसका नाश होता नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बात सही है, और हम गाड़ी में जब आते हैं या तो घर में सुनते हैं सीढ़ी रखकर, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बहुत अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है अंदर कि यही बात सही है। लेकिन वहां तक कुछ क्षण तक हमको अच्छा लगता है, फिर वापिस जैसे काई को हटाते हैं जलाशय में से और पानी पी लिया, बाद में काई वापस आ जाती है, बस वैसी ही बात है यहां। इसलिए यमराज हम सबको एक चिंतन करने के लिए पुष्प गुच्छ जैसा दे रहे हैं कि जरा सोचिए इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित का अर्थ है विशेषेण पश्यति चिनोति च, यानी ज्ञानी या मेधावी। लेकिन यहां अर्थ वो नहीं है, यहां अर्थ है वह स्वयं प्रकाश आत्मा। यह स्वयं प्रकाश जो आत्मा है वह कैसा है? सबको प्रकाशित करता है और अपने को भी प्रकाशित करता है। ऐसी बात नहीं कि सबको प्रकाशित किया जैसे दिया तले अंधेरा, ऐसी बात नहीं है। सबको प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और स्वयं को भी प्रकाशित करेगा। यह जो आत्मा है वह कैसा है? उत्पन्न होता नहीं है। स्वामी जी कैसे मालूम यमराज को? उसने तो कहा आत्मा को उत्पन्न नहीं होते हुए देखा है, उसने तो सिर्फ शरीर उत्पन्न होते हुए ही देखा होगा। और हम लोग भी क्या देखते हैं? उत्पन्न होते हुए शरीर को ही। तो यमराज को पता कैसे चला कि यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और मरता नहीं है? उसे कैसे पता चला? अब उसका तो बिजनेस होगा ना, उसका तो धंधा है कि किसी के शरीर में से जीवात्मा निकाला और ले गए। ऐसी बात नहीं है। यमराज के लिए, नचिकेता के लिए, ऋषियों के लिए और हम सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। प्रमाण माने ज्ञान का साधन। यह मेरे हाथ में जो नैपकिन है वह जानने के लिए आपके पास ज्ञान का साधन इस शरीर में चक्षु इंद्रिय ही है, और कोई साधन नहीं है। इसी तरह यह शास्त्र भी प्रमाण है। किस विषय में? अतींद्रिय विषये शास्त्र एव प्रमाणम। यह आत्मा जो है अतींद्रिय विषय है, किसी इंद्रियों की पहुंच में नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए वह पहुंच में आ गया तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र की आवश्यकता, शास्त्र प्रमाण इसीलिए है कि वह शास्त्र है, उसका विषय अतींद्रिय विषय है। अतींद्रिय विषय होने की वजह से शास्त्र एव प्रमाणम। शास्त्र जो कह रहा है वह ही है ज्ञान का साधन। तो प्रमाण का अर्थ है ज्ञान का साधन। नचिकेता को, यमराज को, हम सब के लिए यह आत्मा नहीं उत्पन्न होता है, नहीं खत्म होता है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अलावा और किसी तरह से इसे समझाया नहीं जा सकेगा। शरीर की उत्पत्ति आप देख रहे हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। यह छह जो भाव विकार है वह शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। शरीर के विकार, शरीर की उत्पत्ति से लेकर नाश तक हम तो देखते ही आ रहे हैं, उसके लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। शरीर पैदा होता है और शरीर नाश होता है, यह जानने के लिए आप शास्त्र में ढूंढते नहीं हो। क्यों? अपनी चक्षु इंद्रिय का विषय है ही, उसके लिए आप शास्त्र कौन से मंत्र में है जरा देख लो कि शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नाश होता है, आप देखते नहीं हो। पता है चक्षु इंद्रिय का विषय है, लेकिन यह पैदा नहीं होता और नाश नहीं होता, शास्त्र एवं प्रमाण। इसलिए यहां कहा न जायते म्रियते वा, जो जो चीज उत्पन्न होती है उसमें क्या होगा? नाश होगा, उसमें विकार होगा। यानी एक आकार है, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ, इतना सा आकार है, इतना सा उसका वेट है, कुछ पाउंड, पहले तो पाउंड बोलते थे, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, किलोग्राम भी हो गया। मुझे तो याद है पहले तो पाउंड में था, हाँ, तो पाउंड से हो गया किलो, और फिर वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, जिसमें आकार है विकार होना शुरू हो जाएगा। बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए वह भी एक विकार ही है। ये समझ जैसी बात है, हम सोचते हैं वाह बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है वह एक विकार ही है। क्यों? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, वर्धते का अर्थ है विकार ही है। तो जो जो पैदा हुआ होता है उसमें आकार है, विकार है, विकार है, इसलिए आगे जाके उसमें अपक्षीयते बाद में विनश्यति होना ही है, और वह अनित्य ही होगा, नित्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे दादा और उनके भी दादा अगर नित्य होते तो एक ही घर में कितने लोग रहते और सबको बोर्ड लगाना पड़ता, मैं आपका पांचवी पीढ़ी का दादा हूं, मैं छठी वाला हूं, तो छठी वाला कहेगा तेरे मेरे से भी आगे है, सातवीं वाला तो सौ वाला कहेगा मैं सबसे पहले हूं, तुम लोग बाद में हो। तो अच्छा है सब धीरे धीरे नाश हो रहा है, वरना हमारे घर में सबसे पहले चलने फिरने की जगह नहीं होती। इसीलिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन ये जो आत्मा है ना तो पैदा होता है ना नाश होता है, इसीलिए न जायते म्रियते ऐसा यहां कहा। उतना ही नहीं, फिर बाद में क्या कहा, न यम कुतश्चिन्न बभू कश्चित, उससे कुछ पैदा नहीं हुआ है और वह किसी का कार्य नहीं है। जैसे दृष्टांत के तौर पे लीजिए, दूध से बना दही और दही से बनी छाछ, ये तो हम देखते हैं, मतलब जो दही है उत्पन्न हुआ है दूध से और दही से बाद में बनी छाछ, तो क्या आत्मा किसी से बना हुआ है क्या? लेकिन स्वामी जी आत्मा का तो लक्षण है सच्चिदानंद, अगर सच्चिदानंद में से सत को निकाल दिया जाए तो आत्मा तो खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वह उसके लक्षण है और जो लक्षण है वह लक्ष्य में हमेशा रहेंगे ही। ऐसा नहीं कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म है तो सत चित और आनंद, अब सत को ऐसा लगे कि मैं थोड़ा दिन के लिए छुट्टी लेके घूम के आ जाऊं, ये चित और आनंद ये शरीर को संभाले, ऐसा नहीं होगा, वो तीनों होने चाहिए। तो यह जो लक्षण है वह आत्मा में है और वह उसमें से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? उत्पत्ति किसमें से होगी? जिसमें कारणत्व है उसमें से उत्पत्ति अवश्य होगी। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में कारणत्व है, क्यों? घट हमारे सामने कार्य के रूप में उपस्थित है, लेकिन क्या यह आत्मा है? वह किसी से बना हुआ है क्या? अगर बना हुआ होता तो क्या होता? वह आकार वाला हो जाता, उत्पत्ति वाला हो जाता। उत्पत्ति वाला होता तो स्वाभाविक है नाश वाला होता। इसलिए यहां कहा वह किसी से बना नहीं है। जैसे दही दूध से बना है, वैसे यह आत्मा किसी से बना नहीं है, सुपर आत्मा से बना नहीं है। अगर कोई तर्क लगावे यह आत्मा बना है तो सुपर आत्मा से बना, जैसे मैन सुपरमैन, तो सुपरमैन में कोई बाप होगा, उसका भी कोई होगा बाप, ऐसी बात नहीं है। वह किसी से बना नहीं है और उससे भी कुछ बना नहीं है। क्यों बना नहीं है? क्योंकि वह असंग है। जिसमें संग होता है उसमें बनने की संभावना है। पति पत्नी का संग, बच्चा पैदा होने की संभावना। यहां आत्मा असंग होने की वजह से उसमें से किसी चीज की बनने की संभावना नहीं है। इसलिए यहां कहा आत्मा किसी का कार्य नहीं है और आत्मा से कुछ बनता भी नहीं है। इसलिए यहां कहा कि न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित। तो फिर कैसा है? अजह, उसकी उत्पत्ति हुई नहीं। कल एक सज्जन से बात हो रही थी, मैंने कहा कि यह आत्मा तो अजह है। वह भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे थे और कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म जो भागवत में अक्सर लोग मनाते हैं, हाँ ठीक है, भागवत के दृष्टिकोण से, उसके लेवल के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन अगर तत्व का विचार किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का वास्तव में जन्म है ही नहीं, क्योंकि उसने स्वयं कहा है भगवत गीता के अन्दर, अजो अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। मैं अज हूं, फिर भी माया का सहारा लेकर मैं अपने आप को श्री कृष्ण के रूप में प्रकट करता हूं। प्रकट शब्द है, मेरा जन्म नहीं है। फिर भी कुछ न करने से ये जन्म मना रहे उतना तो अच्छा है। उतने काल तक तो जगत की इच्छाएं छोड़कर बाल श्री कृष्ण की इच्छा में तो लगे हुए, उतना तक तो ठीक है, लेकिन अगर यह समझे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और रात को 12 बजे तक हम भगवान के मंदिर के सामने खड़े रहे, दर्शन करें और फिर प्रसाद खाकर रात को सो जाए जन्माष्टमी के दिन, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो वास्तव में अजह हूं, मेरा जन्म नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उस वक्त अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे तब उसके मन में तो स्पष्टता थी कि मैं वास्तव में अजय हूं, क्योंकि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद दृष्टिकोण से बोल रहे थे। वही दृष्टिकोण यहां है। यह आत्मा कैसा है? नचिकेत, अजह, जन्म नहीं है। तो स्वाभाविक है, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। ये सब हम लोगों के लिए कह रहे हैं यमराज। हमने मान रखा है कि हमारा जन्म है, पासपोर्ट में लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है। अच्छा है वो लोग वो लिखते नहीं है कि मृत्यु तारीख, वो अच्छा है। लेकिन याद रखिए, हमारी सब की जन्म तारीख तो लिखी हुई है, अब मृत्यु तिथि लिखनी बाकी है, घर में फोटो लगी है। फिर क्या होगा? कुछ सालों के बाद वह फोटो के ऊपर हार लग जाएगा। इतना याद रखना, कितनी भी बढ़िया फ्रेम आप लोगों ने बनवाई होगी घर में सदगुरु से बनवा के, लेकिन हार लग जाएगा और हार के ऊपर जो आपके कपाल है तिलक, यहां तिलक हो जाएगा बस, और वहां लिखेंगे जन्म तारीख और स्वर्गवास। स्वर्गवास ही लिखना पड़ेगा, और कोई वास नहीं लिख सकते, हमको पता है उसके कर्म कैसे थे, लेकिन ऐसे लिखना पड़ता है। यह शरीर की बात हो रही है, हमारी नहीं वास्तव में। यहां यमराज जो कह रहे हैं ना कि अजह है, आत्मा अजह है, शरीर का जन्म है तो स्वाभाविक नाश होगा ही, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है, जो आपका अपना आपा है, जिसे आप मैं यह कह रहे हैं, वह अजह है, उसका कभी जन्म नहीं है। समझ, वो तो उसकी बात नहीं, आपका जन्म नहीं है। ओ, लेकिन स्वामी जी घर में रह रहे हैं, बच्चे अगर ऐसा कहे कि 60 साल हो गए, षष्ठी पूर्ति आपकी मनानी चाहिए, अगर पोता या पोती केक लेके आ गए तो क्या करना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए अजह नित्य शाश्वत एवं पुराण, चलो हटो यहां से। ऐसा नहीं, घर में रह रहे हैं तो उनके साथ रहना है प्रेम से, मन में क्रोध की भावना लाए बगैर, धिक्कार की भावना लाए बगैर वो जो कर रहे हैं करने देना चाहिए। अंदर से हमको पता होना चाहिए कि यह जो बर्थडे मना रहे हैं, यह इस शरीर की मना रहे हैं, मेरी तो कोई मना नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वरूप से तो अजय हूं, क्योंकि रहना है आपको उसी घर में। यह ज्ञान सुनकर, यह प्राप्त कर कहां रहना है आपको, उसी घर में रहना है। उसी घर में अज्ञानी बहुत है, ठीक है, अज्ञानियों के साथ अज्ञान की उपाधि धारण करके ही व्यवहार करना पड़ेगा। 100 नाक कट्टे हैं और आप 101 वाले नाक वाले गए तो क्या करोगे व्यवहार? नाक कट्टे वाले जिसे व्यवहार कर रहे वैसे ही हमको व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए पता होते हुए भी कि मैं अजय हूं, घर में व्यवहार तो ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। अंदर से पता होना चाहिए कि यह लोग जिनकी बर्थडे मना रहे हैं वो तो मैं नहीं हूं। तो यह जो आत्मा अपना आपा है वह अजह है, और कैसा है? नित्य है, नित्य है। सब कुछ अनित्य है और आत्मा एक ही नित्य है। यह हमारे देश में नहीं, सब जगह ऐसा सब लोग मानते हैं, सब कुछ अनित्य है, वह सबको पता है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति में एक चीज को नित्य स्वीकार किया गया है, वह है अपना आपा। आत्मा मतलब ऐसा नहीं कि यहां से सब बाहर निकला और घूमने चले गया, ऐसा आत्मा नहीं। वह जो हम मैं कह रहे हैं ना, वह ही है नित्य। अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ मैं नित्य हूं। नित्य हूं का अर्थ है आपका कभी नाश नहीं होगा। शरीर तो नाश होगा ही, लेकिन आप हमेशा रहेंगे। आत्मस्वरूप के दृष्टिकोण से, हां, शरीर के दृष्टिकोण से तो कोई आज तक बचा नहीं है। अवतारी इतने सारे आ गए, आज उनके दर्शन करने हमको नहीं मिल रहे हैं। राम कृष्ण आज आपको दिख रहे हैं क्या? हां, थिएटर में आप अवश्य देखोगे, लेकिन आज यहां देखने नहीं मिलते। जिसका जन्म है, जिसका जिसका प्रागट्य है, उसका नाश और अंतर्ज्ञान होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मतत्व जो है, जो अपना आपा है, वह नित्य है, हमेशा रहने वाला है। नित्य भी कहा और बाद में कहा शाश्वत। शाश्वत माने क्षय से रहित, क्षय यानी कि नाश, नाश से रहित है। उतना ही नहीं, अजो नित्य शाश्वतयम पुराण। भाष्यकार कहते हैं पुराना होते हुए भी वह नवीन है, नया है, एवर फ्रेश कंपनी है ना रिलायंस वाली, एवर फ्रेश रिलायंस, एवर फ्रेश। तो यह आत्मा भी ऐसा ही है, शरीर बदलेंगे, ब्रह्मांड आएंगे और जाएंगे, लेकिन आत्मा कैसा है? पुराण अजह नित्यः शाश्वत अयम पुराण। फिर आगे कहते हैं न हन्यमाने, न हन्यते अन्यमाने शरीर, शरीर का नाश होते हुए भी आत्मा का हनन नहीं होता। यानी कोई व्यक्ति मार रहा है किसी को बाण से या गन से, वह ऐसा मानता है कि मैंने उसको खत्म किया, आत्मा खत्म होने वाला नहीं है। बंदूक की जो गोली है वो पंच महाभूत से बनी है, स्वाभाविक है ना, और जो शरीर है वह भी पंच महाभूत से बना हुआ है, तो पंच महाभूत का टकराव होगा तो ये शरीर का नाश तो होने वाला ही है, लेकिन ये आत्मा जो है वह पंच महाभूत से बना नहीं। इसीलिए गोली लगते हुए भी आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश अवश्य होगा। इसलिए यहां कहा न हन्यते हन्यमाने शरीर। 18वें मंत्र में यह बात करने के बाद आगे और एक मंत्र आ रहा है, हंता चेन्मन्यते हन्तुम हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायम् हन्ति न हन्यते। अगर कोई मारने वाला व्यक्ति आत्मा को मारने में अपने आप को समर्थ दिखता है और मरने वाला उस आत्मा को मरा हुआ मानता है, तो वह दोनों आत्मस्वरूप को जानते नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी को मारता भी नहीं और किसी के द्वारा मरता भी नहीं। 18वें मंत्र में स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा बतलाने के बाद, ऐसा दर्शन कराने के बाद, अब ये 19वें मंत्र में सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा भिन्न है, क्योंकि यह शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है लेकिन सूक्ष्म शरीर और आत्मा एक ही है क्या? नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा भिन्न है। देखते हैं, हंता चेत मन्यते हन्तुम, मारेगा कौन? आत्मा तो नहीं मारेगा, मारने की क्रिया किसमें होगी? शरीर के द्वारा ही होगी, जैसे ताली बजाई तो ऐसे ही आवाज नहीं होगी, ताली बजाने के लिए दो हाथ साथ में आए। तो कोई पूछेगा ताली किसने बजाई? मैंने बजाई। तो जो ताली बजाने की क्रिया है वह शरीर से दिखती है, उसी तरह यहां जो आत्मा है वह तो किसी को मारेगा नहीं, मारने की क्रिया होगी किसमें? शरीर के द्वारा। लेकिन अगर शरीर मारेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर मारने वाला हुआ तो मुर्दा भी किसी को मार सकता है ना, क्योंकि वह भी शरीर ही है ना आफ्टर ऑल। समझ में आ रहा है ना? जैसे शरीर मारने की क्रिया कर रहा है ऐसा हमने निर्णय किया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि घर में किसी की मौत हो गई तो वह भी हमको मार सकता है, इसीलिए लोग पैक करके भेज देते हैं जितना जल्दी हो सके भेज दो यहां से। शरीर मारने की क्रिया इसलिए कर रहा है, हमें दिखता है क्योंकि शरीर के अंदर इंद्रिया भी है, शरीर के अंदर मंदर मन भी है। तो मारने की क्रिया शरीर के द्वारा दिख रही है, लेकिन उसके पीछे इंद्रिया भी है, मन भी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मन और इंद्रिया यह ही मारने वाला होता है।